नमो भगवते वासुदेवाय नमो। हरे कृष्ण। आज प्रातःकाल श्रीमद् भागवत के चतुर्थ द्वितीय अध्याय से 25वां श्लोक का अध्ययन पठन पाठन होगा, श्रवण कीर्तन होगा। गिरः श्रुताय पुष्पिन्या मधुगन्धेन भूरिणा मथ्ना चोन्मथितात्मनः सम्मोहन्तु हरद्विषः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद ही मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और जो शिवद्रोही है वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहे, ये शाप है, शाप का वचन है। तात्पर्य, उच्च स्तरीय भौतिकवादी जीवन के लिए उच्चतर लोकों में पहुंचने की वैदिक प्रतिज्ञा की तुलना पुष्पमयी अलंकृत भाषा से की गई है, क्योंकि पुष्प से निश्चित रूप से पुष्प में निश्चित रूप से सुगंधी होती है किंतु वह अधिक काल तक नहीं चलती। इसी प्रकार पुष्प में मधु होता है किंतु वह भी शाश्वत नहीं होता। तात्पर्य समाप्त। जड़ बन चुके हैं और जो शिवद्रोही है वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहे, इस प्रकार का शाप दिया। कौन है शाप देने वाले? आप थे कल, परसों, नरसों? नंदी के, नंदी बैल शायद आपने सोचा होगा। नंदी बैल तो बैल तो बोलता नहीं, लेकिन यहां तो बैल संस्कृत में बोल रहा है। नंदी भगवान का पार्षद कहा है, परिकर है, और भी कई सारे शिव जी के परिकर होते ही है। भूत पिशाच भी होते, उसमें गले में सर्प होता है तो कान में बिच्छू होते हैं, और ऐसे शिव जी हाथ में त्रिशूल लेके, एक हाथ में दूसरे हाथ में डिम बजने वाला डमरू भी लेके नंदी बैल के पीठ पर विराजमान होके अपनी यात्रा करते रहते हैं। वैसे यही शिव जी को एक समय नवद्वीप में आना था गौर कथा सुनने के लिए, तो नंदी के पीठ पर बैठे और जा रहे थे गौर कथा सुनने के लिए, लेकिन नंदी बैल की स्पीड कुछ कम होती है तो उन्होंने हिसाब लगा इस स्पीड से मैं जाऊंगा तो कथा के अंत में ही पहुंचूंगा मैं, तो उन्होंने अपने नंदी बैल को वही पार्क कर दिया कई, और ब्रह्मा के वाहन हंस के पीठ पर बैठ के बड़े स्पीड के साथ मध्यद्वीप पहुंचे। मध्यद्वीप, नवद्वीप में एक द्वीप है मध्यद्वीप और इसी मध्यद्वीप में है या भागवत की गौर भागवत कथा होने जा रही थी नैमिषारण्य। वहां भी नैमिषारण्य है तो नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी गौर भागवत कथा सुनाने वाले थे तो शिव जी आ रहे हैं और आ भी गए और वहां गौर कथा हुई और शिव जी बड़े ध्यानस्थ होके ओम नमो भगवते श्री गौराय ऐसा कुछ कहा होगा तो कथा प्रारंभ हुई और शिव जी ध्यान पूर्वक उस कथा का श्रवण कर रहे थे। शिव जी जो हुआ या समझे नहीं शिव जी को, दक्ष समझे नहीं शिव जी को, कितने उच्च कोटि के महात्मा है जी। वैष्णवानाम कैसे है, वैष्णवानाम कौन है, यथा शंभु सारे वैष्णव में श्रेष्ठ है शंभु, जैसे सभी नदियों में श्रेष्ठ है निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा पुराणानाम इदम तथा। इस श्लोक में कईयों का श्रीमद् भागवत का भी महिमा है, सारे पुराणों में श्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण, सदेवों में श्रेष्ठ है आदिदेव अच्युत श्री कृष्ण, सारे नदियों में श्रेष्ठ है गंगा मैया की, और वैसे ही सभी वैष्णव में श्रेष्ठ है शिव शंकर महादेव की। तो ये महिमा शिव जी थोड़े समझने में कठिन आते हैं, कठिन होते हैं, उनकी बाह्य स्थिति भी जब देखते हैं, गले में मुंड की माला भी है और सारे शरीर पर राख मली होती है और जहां भूत पिशाच भी उनके परिकर होते हैं और किसी स्मशान भूमि में ही वे रहते हैं, वैराग्य की मूर्ति है वैसे ये शिव जी, लेकिन ध्यान करते रहते सदैव भगवान का और नाम संकीर्तन भी करते रहते हैं। चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पंचमुखी महादेव राम राम हरे हरे। आपने देखा है शिव जी के हाथ में क्या है, माला होती है, माला फेरते रहते हैं। वैसे या वृंदावन में भी हम देखते हैं शिव जी का, शिव जी के कई सारे स्थान है, ये मथुरा में भी दिग्पाल है, वृंदावन में भी चित्रपाल है, और कौन से महादेव है वे, गोपेश्वर महादेव है वे, रास क्रीड़ा में लक्ष्मी को भी प्रवेश नहीं मिल रहा है आपको पता चला होगा, लेकिन शिव जी ने प्रवेश किया मानसरोवर में, उन्होंने स्नान जैसे किया तो उनको गोपी का शरीर प्राप्त हुआ, वैसे वे अपने जटाओं के साथ और सर्प और बिच्छू के साथ ही प्रवेश करना चाहते थे। रुक जाओ, स्टॉप, ऐसे आप पहले नहा धो तो लो। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगी मानसरोवर में तो प्रवेश किए, जैसे भी शिवजी होते हैं जो ऊपर आए तो वहां आप आइए फिर आपका स्वागत है। तो भगवान की रास क्रीड़ा में भी जिनका प्रवेश है तो फिर और कहना ही क्या, उच्च कोटि के माधुर्य लीला का भी रसास्वादन करने वाले ये शिव जी। तो यहां पर भी देखते हैं वृंदावन में, नवद्वीप में भी शिव जी वैसे सदैव कीर्तन करते रहते, पंचानंद तला है वहां, हरी और हरी हर क्षेत्र है वहां, जहां कौन सा गोद्रुम द्वीप में जहां कीर्तन का महिमा है, कीर्तन का प्राण्य है, और सब समय शिव जी कीर्तन और नृत्य करते रहते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिव जी ने अपना धाम छोड़ के वैसे वे नवद्वीप के निवासी बन जाते हैं। और शिव जी जब कहा है, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, शिव जी जब कीर्तन और नृत्य करते हैं तो नृत्य के साथ वे ये जो कर्मकांड ज्ञान कांड को ठुकराते रहते हैं, गेट आउट, तुम्हें यहां स्थान नहीं है, यहां स्थान तो केवल कीर्तन को है। तो कीर्तन और नृत्य करते समय वो लात मारते हैं, तो कर्मकांड ज्ञान कांड जो केवल विशेष भांड। तो शिव जी के भी अनुयायी कर्मकांड में लगे रहते हैं, या चर्चा हो रही है इस श्लोक में। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, वे कर्मकांडी ज्ञानकांडी क्या समय, हम तो बस वेदांत का अध्ययन करते हैं और कोपी न बनता खलु भाग्य बनता, बस हम कितने भाग्यवान हैं। देखो हमारी क्या जरूरत है, केवल हमको कोपीन चाहिए, केवल कोपीन पहनते हैं और हम लोग वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, वेदांत वाक्य हम रमान रहते हैं। लेकिन शिव जी नवद्वीप में बस वेदांत का तो नहीं कहें, कर्मकांड ज्ञान कांड का धिक्कार उनको ठुकराते रहते हैं। ऐसे शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु, उनके चरणों में दक्ष प्रजापति ने अपराध किया, उनके चरणों में दक्ष प्रजापति जैसे आए उन्होंने स्थान ग्रहण किया होगा, या जैसे आ ही रहे थे और मंच पर पहुंचे तो सभी खड़े हो गए, एक के अलावा एक बैठे रहे। वे बैठे थे कौन, शिव जी बैठे थे। तो फिर सबको तो बिठा दियो के ये मैं सिट डाउन, तो फिर जो बैठे ही थे उठे भी नहीं थे, तो उनके चरणों में खूब अपराध किए। ध्यान अवस्था में थे, ध्यानस्थ थे शिव जी, उनको पता भी नहीं चला दक्ष आए कब आए या नहीं आए या आए, और सभी खड़े हुए तो भगवान का ध्यान कर रहे थे। सत्र है इष्ट देवेर स्फूर्ति जैसी बात। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति। स्थावर जंगम उनके बीच में से जा भी रहे हैं, उनको देखते हुए भी नहीं देखते हैं परमहंस या परिव्राजकाचार्य कोई उच्च कोटि के महात्मा, क्योंकि वे सदैव तल्लीन रहते हैं अपने इष्टदेव के स्मरण में। सर्वत्र है इष्टदेवेर स्फूर्ति, तो शिव जी को अपने इष्टदेव की स्फूर्ति, भगवान की स्फूर्ति स्मरण में वे तल्लीन थे, बैठे थे। इस बात को दक्ष नहीं समझे और अपराध किए, बहुत काली गलौच भी हुआ। तो इस बात को, ये बात सहन नहीं हुई हमारे नंदी जी को, तो नंदी ने शाप दिया, तुमको मुख मिल जाए, कैसा, बकरे का मुख तुमको मिल जाए। तुमको बकरे, मैं आईने में देखा होगा, वाह क्या हुआ, बकरे का मुख मिला। और जो वहां ब्राह्मण मंडली थी, जो जिन्होंने अपराध के वचन सुन लिए, डाइजेस्ट किए, उसके विरोध में कुछ नहीं कहे, स्वयं तो अपराध नहीं किए थे लेकिन अपराध के वचन सुन तो लिए और कुछ विरोध नहीं किया, तो अपराध तो हो ही गया, तो उनको भी शाप दे रहे हैं नंदी ही। और ये शाप के वचन ही हम पढ़ रहे हैं। गृहेषु कुटधर्मेषु सक्तग्राम्य सुखेच्छया, कुटधर्म से तुम आसक्त हो जाओगे, तुम ग्रह मेधी बन जाओगे, ग्राम्य सुखेच्छया और सुख की इच्छा, लालसा से त्रस्त होंगे तुम, कर्म तंत्र वितुनते वेदवाद विपन्नधि, तुम वेदवाद रतः बन जाओगे, वेदों की खूब तुम चर्चा विचार विमर्श करते रहोगे। स्त्री कामः, और स्त्री में काम या स्त्री कामी बन जाए, तो ऐसे कहते कहते संसरस्तु संसरंतु, बार बार जन्म धारण करते रहोगे, क्योंकि तुमने शर्वा अवमानिनम, शिव जी के चरणों में तुमने अपराध किया है, इसलिए ये सब भोग भोगो। या ये विस्मृतात्म गति ही, और विस्मृति हो जाएगी आत्मगति की, को भूल जाओगे, जीवन के लक्ष्य को तुम भूल जाओगे। ऐसे कहते कहते अब गिरह श्रुताया पुष्पिन्याम मधुगंधे न भूरिना, तुम आकृष्ट होंगे, किससे आकृष्ट होंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इससे नहीं होंगे। आप निद्रा से आकृष्ट हो रहे हो, ये भी शाप ही होगा। पुष्पिन्या, वेदों के जो शब्द है, जैसे सुंदर सुंदर पुष्पों की ओर हम लोग आकृष्ट होते हैं, लेकिन कुछ समय में वो पुष्प पुनः मुरझा जाते हैं, दिखने में सुंदर लगते हैं लेकिन ज्यादा समय के लिए।
सुगंध भी है, मधुगंधेन भूरिना,
बहुत सारा गंध है और सौंदर्य भी है, लेकिन अधिक समय तक नहीं टिकने वाला है। इसी प्रकार पुष्प मधु होता है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, किंतु वह भी शाश्वत नहीं होता। तो फूल का सौंदर्य शाश्वत नहीं होता और फूल में जो माधुर्य या मधु है वो भी शाश्वत नहीं होता। उसी प्रकार वेदों की कही हुई बातें तो आकृष्ट करती है, फिर उसी से कर्म कांड, उसी में ज्ञान कांड, उसी से चलता है। तो भगवान यही बातें लगभग जो आज के श्लोक में कही हुई बातें, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः, भगवान कह रहे जो अविपश्चितः, जो बुद्धिमान नहीं है, मतलब ही कैसे है, बुद्धू है, वे चर्चा करते रहते हैं। वेद वाद रतः, वेद और वाद विवाद संवाद खूब चलता रहता है। न अन्यदस्तीति वादिनः, और यहां तक चर्चा पहुंच जाती है कि इसके अलावा और कुछ है नहीं वेदों के अलावा। वेद कैसे अपौरुषेय वेद है, वेदवान है। आपको पता होगा नहीं होगा, कुछ लोग गीता भागवत को नहीं मानते, केवल वेद को मानते हैं। गीता भागवत तक उनकी पहुंच नहीं है, गीता भागवत के चरणों में वे अपराध करते रहते हैं। कोई समाज है, आर्य समाज है कोई नाम, और भी है, वो भी है, तो केवल वेदों को मानते हैं। न अन्यदस्तीति वादिनः, लेकिन ये वेद वाद रतः वाले भगवान स्वयं कह रहे हैं, स्वर्ग परा कर्म जन्म फल प्रदाम, जो वेदों की जो वाणी और उसके वचन और उसके जो इस पर कोई अमल करेगा तो उसकी पहुंच केवल स्वर्ग तक ही है। क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति ही, और उनका लक्ष्य होता भोग और ऐश्वर्य और स्वर्ग, ग जाना चाहते स्वर्ग, स्वर्ग तक जाना चाहते हैं, लेकिन वे जानते नहीं। पुनः उन्हें नीचे आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशन्ति, तो वेदों का खूब पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे और कर्मकांड करेंगे। जिस कर्मकांड से कहा नहीं कर्म कांडे न पर आत्मा प्रकाशते, इस कर्मकांड में परात्मा का परमात्मा का प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है, न तो परम धाम का कुछ उल्लेख या लक्ष्य वहां वेदों में या वेद के कर्म कांड। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी से जब चर्चा हो रही उसी वाराणसी में, जिस वाराणसी में ये वेदांत वाक्य से सदा रमंत कवाल है, जिस वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु को देखा वहां के ब्राह्मण पंडितों ने, अरे सन्यासी कैसा, केवल कीर्तन और नृत्य करता है, ये कैसी भावुकता, ये नया नया, इसको शायद बिठा के वेदांत का अध्ययन कराना चाहिए, वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करता। तो वैसे आगे के जब संवाद हुआ, चैतन्य महाप्रभु आ गए उस धर्म सभा में, और आके चैतन्य महाप्रभु ऐसे वही बैठ गए जहां लोग अपने हाथ पैर भी धोए थे, ऐसे स्थान पर ही चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो अपना विनम्रता का प्रदर्शन हुआ, तो ये सारे बड़े बड़े पंडित चकित हो गए, वही बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे हुए देखा तो खड़े हो गए, आगे बढ़े और उनको वहां से उठा के फिर स्थान दे दिए। फिर जब संवाद शुरू हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, मैं तो मूर्ख हूं, या मेरे गुरु ने तो मुझे मूर्ख समझा, तुम आओ किसी काम के नहीं हो, तुम क्या करो, तुम कीर्तन करो, इसीलिए मैं कीर्तन ही करते रहता हूं। और फिर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने लगे, ऐसा कीर्तन करने लगे ऐसा युद्ध, तो जपीते जपीते मंत्र करी लपागो। चैतन्य महाप्रभु इतने तन्मय तल्लीन होने लगे हुआ करते थे कीर्तन करते 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 करते, समाधिस्थ होते, तो उस स्थिति को जब प्राप्त किए तो फिर पुनः अपने गुरु महाराज के पास गए और पूछे, कीब मंत्र दिला गोसाई कीब तारो बोल, जपीते ही जपीते मंत्र करी लो पागो, आपने कैसा मंत्र दिया है, कितना बल है इस मंत्र में, इस मंत्र के उच्चारण से तो मैं तो कौन हो गया, पगला बाबा, मैं तो पागल हो गया, कैसा मंत्र है ये। तो उसी ऐसे वाराणसी में, ऐसे पंडितों के वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के साथ 2 महीने बिताए और 2 महीने शिक्षा दी, अपना संग दिया, शिक्षा दी। और उस संघ के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही है, कर्मकांड ज्ञानकांड केवल विषय भांड, तो इस कर्मकांड ज्ञानकांड को लेके हिंदू समाज व्यस्त है। उसी के साथ फिर ये देवी देवता पूजा तंत्र मंत्र यज्ञ ये सब चलते रहते हैं। इसी को भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब क्या, ये कर्म कांड धर्म परित्यज्य, ये ज्ञान कांड धर्म परित्यज्य, और करो क्या फिर, ये सब त्यागना है तो स्वीकार किसका करना है, मामेकम शरणम, तो मामेकम, इस कलयुग में मामेकम तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम है, कृष्ण का नाम है, नाम बिना की नाही को आर 14 भुवन माझे। तो ये सिद्धांत, ये निष्कर्ष है, शास्त्रों का भी है और वैष्णवों का है, और ये धर्म, इस प्रकार का धर्म श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सिखाए। तो ये वेदवाद, तो इनको शाप दिया है, इन ब्राह्मणों को शाप दिया नंदी ने, सम्मुहंतु हरद्विषः, तुमने हर के चरणों में अपराध किया है, इसीलिए तुम क्या करते रहो, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, तुम्हारा चलता रहे, तुम मोहित होते होते रहे, आसक्त रहे आवे, ऐसा अनुवाद किए, भाषांतर किए है। तो वैष्णवों के चरणों में अपराध का फल ये है, तुम कर्मकांड में लगे रहो, तुम ज्ञान कांड में लगे रहो, तुम वेदों की जो पुष्पिन्या पुष्प जैसी वाणी उसी में तुम रत रहो। वेदांत वाक्य से सदा रमनता, ये वरदान नहीं है, ये क्या है, ये शाप है। कोई वेदवाद रतः है तो उसको शाप मिला हुआ है, उसी में वो रत है। तो वैष्णव के चरणों में अपराध, विष्णु के चरणों में वैष्णवों के चरणों में अपराध का फल, इस प्रकार का भी फल या इस प्रकार शाप। हम पुनः पुनः मुशिको पुनर्मुशिको भाव भी हो सकता है, जिनकी कृपा से हम उन्नति कर सकते हैं, यार तुम क्या बन जाओ, ओ चूहा मेरा, ओ बिल्ली मेरा पीछा करती रहती है, चूहे ने कहा हे योगी बाबा हमें क्या बना दो, हमको बना दो, हमको बिल्ली बना दो, उन्होंने ओके बिल्ली बन जाओ। जब बिल्ली बन गया तो ओ फिर कुत्ता पीछा कर रहा है, हमको कुत्ता बना दो, कुत्ता बन जाओ, कुत्ता बन गया, अभी तो शेर पीछा कर रहा है तो शेर बन जाओ। शेर जब बन गया तो योगी बाबा आ गई थे, तो शेर को लगी थी भूख, उसने सोचा कि और दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, नाश्ता पानी हो जाए। तो गुर्राने लगा शेर, और जैसे आगे कढ़ाने का प्रयास हो ही रहा था, इतने में बन जाओ, कौन बन जाओ, चूहा बन जाओ। पुनः पुनरमुषी का भाव, पुनः चूहा बन जाओ। उस योगी के कृपा से सब हो रहा था, लेकिन उनके चरणों में ही अपराध जब प्रारंभ हुए तो सारी सिद्धि, सारे उन्नति, सारी प्रगति की अधोगति समाप्ति हो गई। आपके बगल के यहां जो काली अदा है, वहां कौन कर रहे थे ध्यान, सौभरी मुनि ध्यान कर रहे थे, जल में समाधि लगती थी, संसार से दूर और जल में जाके ध्यान अध्यान लग जाता, ध्यानस्थ हो जाते थे। लेकिन एक समय की बात है, कौन आ गए, गरुड़ जी आ गए, गरुड़, और उन्होंने कुछ मछली देखी होगी उस तालाब में, तो नीचे उतरे और कुछ मछली लेके आगे बढ़े खाए। तो हुआ फिर मछली समाज का एक सभा, शोक सभा, कुछ लोगों की मृत्यु हुई, जान चली गई, तो उस सभा में ये भी आ गए, सौभरी मुनि भी आ गए, और उन्होंने शाप दिया, किसको शाप, गरुड़ वैष्णव, जो परम वैष्णव है, भगवान का वाहन है, उनकी क्या कसूर, अपने स्वभाव से उन्होंने मछली खाई तो कोई बड़ा अपराध तो नहीं था, लेकिन सौभरी मुनि ने क्या किया,
को शाप दिया, खबरदार पुनः यहां आओगे तुम यहां नहीं आ सकते। तो जब से ये अपराध किया गरुड़ के चरणों में, तब से फिर जो पहले की पहले जो ध्यान लगता था, मन केंद्रित होता था, सारी दुनियादारी को वो भूल चुके थे वैसे, लेकिन अपराध होने के कारण तब से ये ध्यान नहीं लगने लगा। जल में जाके बैठ तो गए पुनः, लेकिन पहले स्मरण नहीं आता था ये कि ये मछली स्त्री मछली है, ये पुरुष मछली है, और देखो देखो क्या हो रहा है, उनका उनका मिलन हो रहा है, उनका संग हो रहा है, मैथुन हो रहा है। पहले तो स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देवी स्फूर्ति, ऐसा हो तो रहा था पहले, लेकिन जब अपराध किया तो फिर उस स्थावर जंगम को देखने लगे, उससे प्रभाव होने लगे, विचलित होने लगे, और पुनः उनके मन में काम वासना जगी। जैसे भगवान क्या कहे ही है, क्या क्या कहे उस शाप में भी वैसे कहा ही है, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, तो उन्होंने फिर काली अध भी छोड़ दिया, वृंदावन भी छोड़ दिया, और इतनी कामुकता बढ़ गई, किसी स्त्री के खोज में गए, राजा मंधाता के दरबार में पहुंचे, उनकी 50 पुत्रियां थी, तो उनका विवाह उन्होंने विवाह एक के साथ नहीं किया, 50 के साथ विवाह हुआ। तो ये सारा हुआ, टर्निंग पॉइंट कहां से, अपराधों से। अपराध किया तो सारी काम वासना जगी, और जो अंतर्मुख होने लगे थे फिर पुनः बहिर्मुख, भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपाटी आधारे, फिर निकट ये माया कुछ दूर नहीं है। तो जैसे ही भाव बदलते हैं, जैसे ही हमसे अपराध होते हैं, उसमें वैष्णव अपराध होता है, तो वह कामेच्छा इसीलिए साधु सावधान। अपराधों से बचना है। नामाश्रय करी जताने तुम्हें ताको आपना काजे, भगवान के नाम का आश्रय तो लेना है ही, लेकिन बिना अपराध शून्य हैया लहो कृष्ण नाम, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने नाम वितरण तो कर रहे हैं, श्रद्धावान जन पति अचे नाम हट जीवर करम, जीव के कल्याण उद्धार के लिए क्या हुआ है, भक्ति विनोद ठाकुर ने नाम हाट, बाजार हाट होता है, मार्केट प्लेस ऑफ द होली नेम प्रारंभ किया है। आजा श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन, श्रद्धावान लोग आ जाओ, किसको मिलता है हरिनाम, श्रद्धावान। मूल्य क्या है, श्रद्धा ये मूल्य, उनको हरिनाम मिलेगा, और फिर आगे कहते हैं नाम जप करना है तो अपराध शून्य हैया लहो कृष्ण नाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमारा धर्म की स्थापना, जिस धर्म की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्थापना किए हैं, हरिनाम धर्म, हरिनाम संकीर्तन धर्म की, कली काले धर्म हरिनाम संकीर्तन, और नहीं धर्म, और धर्म नहीं है, केवल धर्म है हरिनाम संकीर्तन। ये कर्म कांड करना है, ये ज्ञान कांड, उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करती है, कोई यज्ञ करना है तो बहुत सारी सामग्री जुटानी पड़ती है, बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। और राजस्व यज्ञ होना था तो युधिष्ठिर महाराज ने चार भाइयों को चार दिशा में भेजा, खूब धन जुटा के लिया, धनंजय, जिन्होंने बहुत धन जुटा लिया तो धनंजय नाम हुआ। तो धन चाहिए, बहुत सारी व्यवस्था होती है, फिर और कई वर्षों तक भी तैयारियां चलती रहती है, फिर यज्ञ प्रारंभ होता है, वो धार्मिक कृत्य प्रारंभ होते हैं। लेकिन को जब संकीर्तन यज्ञ करना होता है तो कौन कौन सी तैयारी हम करते हैं? आपको हिलना डुलना भी, डुलने की भी जरूरत नहीं, आप जहां भी हो हरे कृष्ण 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 हरे राम। तो यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजन्ति हि सुमेधसः। तो बुद्धिमान या अविपश्चितः भगवान कहे, जो वेदवाद रतः है वे तो बुद्धू है, या मायया अपरित ज्ञान, माया ने उनका ज्ञान, सही ज्ञान चुराया है, लेकिन सचमुच जो बुद्धिमान है, इस कलयुग में क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ करेंगे। और फिर वो संकीर्तन यज्ञ ध्यान पूर्वक करेंगे, अपराध रहित करेंगे, फिर जीवन सफल होगा। फिर अनुभव भी करेंगे कि ये हरे कृष्ण ही कौन है? यही कृष्ण है, यही कृष्ण है, हरे कृष्ण ही क्या है? कृष्ण भी है, राधा भी है, हरे कृष्ण और राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधा रमन, राधा रमन, रमन रमन, राधे राधे। तो भगवान दूर नहीं है, और ये भगवान का अवतार है, हरि नाम भगवान का अवतार, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो जो हुआ नाम रूप ये भगवान का अवतार है, इसी के सहारे से चैतन्य महाप्रभु बहुत सरल, इजी प्रोसेस, और इसे और इजी नहीं हो सकता, इजीएस्ट, और कोई भी इसको अपना सकता है। वेद रहता होगा तो फिर आप स्त्री हो, आप वैश्य हो, शूद्र हो, न श्रुति गोचर कहा, आपका अधिकार नहीं है। स्त्रियों वैश्यो तथा शूद्र न श्रुति गोचर, वहां आपका अधिकार नहीं है। हो वैश्य हो ये हो, लेकिन हरि नाम पर अधिकार तो सभी का है। या फिर ये भी सुनने में आता है कि ये महामंत्र इस शास्त्रों में पाया जाता है, उसके पहले ओम या ओम से प्रारंभ होने वाले जो मंत्र है केवल ब्राह्मण ही उसका उच्चारण कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती, वैश्य नहीं कर सकते, शूद्र नहीं कर सकते। तो ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इति षोडशकं नाम नाम कलि कल्मषनाशनम् नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा कहे ऐसे, जब नारद जी पूछने गए अब क्या होगा, अब नया युग आ गया, अब कौन से विधि का अवलंबन होगा जिस विधि से तो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, तो ब्रह्मा जी कहे ओम हरे राम राम राम। तो ओम से मंत्र प्रारंभ हो रहा है, तो लेकिन कलयुग में ये हरि नाम सभी के लिए उपलब्ध कराना है, तो ओम को भी अलग किया और थोड़ा इसका क्रम ये जब आगे हम जब कहते जाएंगे, पहले तो मरा 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 हो रहा था, म पहले की रा पहले, म राम 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 राम, तो हरे कृष्ण पहले हरे राम पहले, हम जब कहते जाएंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम, पहले कौन सा बाद में कौन सा, कुछ बचता नहीं है, कुछ फर्क मालूम नहीं होता। तो ओम को अलग किया, वैसे उसी के साथ ओम से कृष्ण से या हरे कृष्ण से ही ओम उत्पन्न होता है, यानी कि ओम से कृष्ण उत्पन्न होते हैं। कभी कभी चित्र दिखा दे ओम अभी ओम से क्या भगवान उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भगवान का ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा अहम्, ब्रह्म का आधार मैं हूं, ब्रह्म का स्रोत मैं हूं, तो ओम के स्रोत भी भगवान है, यानी कि ओम से भगवान नहीं उल्टा है, भगवान से ओम। तो जो ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा अहम् ऐसा जो समझते हैं वे जानते नहीं, वे जानते नहीं सत्य को नहीं जानते। तो हमारे षड गोस्वामी वृंदों ने ये वृंदावन में जो साधना की है उसका आधार हरि नाम है, हरि नाम करते नामाश्रय करी जतने तुम्हें ताको आपन काशे, हरि नाम ही सब कुछ है, एवरीथिंग ऑल इन ऑल सब कुछ हरि नाम है, हरि नाम ही हरि है, और उस हरि नाम में श्रद्धा सबसे मूल्यवान वस्तु, व्यक्ति या वस्तु व्यक्ति अगर कोई है तो हरि नाम है। तो फिर एक सनातन गोस्वामी के पास व्यक्ति आ गए, उन्होंने कहा था कि हमें मूल्यवान वस्तु दिए, तो उन्होंने वो समय हरि नाम तो नहीं दिया, उसको क्या दिया, स्पर्श पारसमणि दे दिया। तो पारसमणि जब लेके दौड़ रहा था अपने घर की ओर, तो दूसरे कोई लोग रास्ते में कहां जा रहा है क्या हुआ रुक तो जाओ नहीं रुक नहीं सकता जाना मैं जिस लोहे की वस्तु को मेरे घर में जितनी है उसको स्पर्श करूंगा तो क्या होगा सोना होने वाला है ऐसा मूल्यवान वस्तु मुझे मिली है और कहां से मिली कहां रखी थी और कूड़ा करकट में डिब्बे में रखी थी तो पागल कहीं का मूल्यवान वस्तु कोई डस्टबिन में थोड़े ही रखता है पुनः जाओ और उनसे कहो आपने तो मुझे ठग लिया मूल्यवान वस्तु तो तिजोरी में रखी जाती है वहां चौकीदार होते हैं गन मैन होता है वहां तो कोई नहीं था जहां मैंने मुझे पारस मनी मिला तो सनातन गोस्वामी के पास आया और कहने नहीं आपके पास जरूर इससे अधिक मूल्यवान वस्तु होनी चाहिए नहीं नहीं है जरूर दीजिए तो फिर सनातन गोस्वामी कहे कि जिसको तुम मूल्यवान समझते थे मैंने कहा और तुम समझ भी गए स्वीकार कर लिया और पारस मणि को तो फेंक दो फिर वो सोचने लगा और इसको भी मैं खो बैठूंगा और दूसरी वस्तु नहीं मिलेगी तो अभी उसने तो अनासक्त होना होगा जब वैराग्य उत्पन्न होगा हरि नाम इतनी श्रद्धा कि बस नाम बिना किचु नाई को आर 14 भुवन माजे 14 भुवनों में बस और कोई मूल्यवान वस्तु है नहीं केवल मूल्यवान है ये भगवान का नाम। तो उस व्यक्ति ने भी फिर पारस मणि फेंक दिया तो फिर आओ बैठो तो फिर उसको कहा बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम तो सारे मंडलपति थे बड़े बड़े जमींदार थे कौन कौन थे मिनिस्टर्स थे हमारे षड गोस्वामी वृंद वो सारा त्याग के वृंदावन आए और फिर उनको हरि नाम केवल प्राप्त करके रखना ही नहीं है साक्षात्कार करना है कि ये हरि नाम ही कौन है हरि है भगवान है श्री कृष्ण है अपराधों से रहित नाम अपराध उसने नाम अपराध ने वैष्णव अपराध जोड़ दिया लिस्ट तो है 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम 10 नाम अपराध लेकिन पहला नाम अपराध कौन सा वैष्णव निंदा तो भगवान को वैष्णव अति प्रिय है उनका जीव अति प्रिय है भगवान को प्रिय है जीव जीवात्मा अपना जीव है उनका खुद का जीव है जीवात्मा हूं तो भगवान उसे प्रेम करते हैं तो जिनसे भगवान का प्रेम है उनको हम ठुकरा दे कुछ गलती करे अपराध करे तो भगवान नाराज होते हैं दुखी होते हैं भगवान सो कुत्ते को हुआ किसी मालिक के कुत्ते का हम प्रेम करते हैं तो फिर क्या होता है वो मालिक का हमसे प्रेम हो जाता है यू लव माई डॉग बिफोर यू लव मी यू लव माई डॉग तो हम कई बार देखते हैं विदेश में खूब चलते रहता है लोग कुत्ते लेके घूमते हैं तो लोग कुत्ते की स्तुति शुरू कर देते हैं थोड़ा बैठ भी जाएंगे उसको पैटिंग करेंगे तो जो कुत्ते का मालिक है बड़ा प्रसन्न हो जाता है ओ हाउ आर यू हेलो उस व्यक्ति से तो कुछ नहीं कहा लेकिन कुत्ते से कुछ अपना प्रेम व्यक्त किया तो कुत्ते का मालिक वेरी वेरी हैप्पी बहुत प्रसन्न होता है तो हम कुत्ते हैं भगवान के कुत्ते हैं भगवान के शुद्र जीव है लेकिन भगवान का कितना सारा प्रेम है जीवों में तो उनके चरणों में कोई अपराध करता है तो भगवान फिर हरि नाम में आसक्ति नहीं होगी मतलब हरि में आसक्ति नहीं होगी संसार में पुनः हम आसक्त हो सकते हैं, इसीलिए सावधान। तो आपको तो मास प्राप्त हुआ है, आप सभी रहते हो यहाँ? कोई विजिटर्स है, कोई गेस्ट है आप में से? कौन कौन दिल्ली वाले बैठे हैं? अरे दिल्ली से कौन कौन है या और कहीं से भी, वृंदावन के बाहर से जो यहाँ नहीं रहते कौन कौन है? अच्छा 10-20 है। कोई सांगली वाले भी है, महाराष्ट्र से भी आए, कल मैरिज पार्टी वाले बैठे हैं। तो anyway, अब जहां के भी हो या जो धाम वास प्राप्त किए हैं उनको भी और सावधानी से, वैसे यहां जब कीर्तन करना, भगवान ही रहते तो यहां जब कीर्तन करना भगवान उसको सुन लेते हैं। मैरिज के लड्डू कहते कि यहां जब करना मतलब यहां लोकल कॉल जैसा है, भगवान का जब जब करना मतलब भगवान को पुकारना है, तो वृंदावन में आके जब करो यहां तो लोकल कॉल। एक तो कॉल क्लियर होता है, लोकल कॉल थोड़ा साफ सुथरा सुनाई देता है और कुछ महंगा भी नहीं होता, खर्चा नहीं है। कॉल क्लियर कर दो, क्लियर कॉल पुकारो भगवान को, प्रेम से पुकारो, अपराध रहित होके पुकारो। फिर भगवान आएंगे, आपको दिलाएंगे, मिलने आएंगे, कोई दूर तो नहीं है लेकिन सामने हो, सामने आ जाएंगे। सूरदास जब कीर्तन भजन करते थे भगवान आके बैठ जाते हैं सुनने के लिए। कैसा कीर्तन कैसा भजन होगा, वो भगवान स्वयं बन जाते उनका ऑडियंस पे। श्रोता बन जाते। सूरदास को जब पता चलता कि भगवान आए तो सूरदास उठ के आगे बढ़ते उनको स्पर्श करने के लिए, तो भगवान उठ के भागने रहे। नटखट जो है भगवान, तो फिर सूरदास के हाथ, तुम बाहर तो दौड़ सकते हो लेकिन मैंने तुमको दिल में पकड़ लिया है, वहां से तो जाने नहीं दूंगा, हिलने नहीं दूंगा, तुम स्वतंत्र हो, जा सकते हो, जाओ सही। एक दृष्टि से अंधे आंखों के वैसे आंखें बेकार है, कुछ काम नहीं है आंखों का, भगवान का दर्शन तो आत्मा की आंखें है। तो जप करते करते, कीर्तन करते करते, शुद्ध भक्ति करते करते वही आंखें जब खुल जाएगी, तो अंधे थे लेकिन दिखाई देता था, देखते भगवान के विग्रह का दर्शन भी करते। एक दिन परीक्षा ले रहे थे कोई भक्त, क्या सूरदास सचमुच देखते हैं, क्या होता है क्या उनको? तो दर्शन के समय जब आए तो पूछा कैसे है भगवान, कहो सूरदास, कहो कैसे है भगवान? तो उन्होंने कहा आज तो मेरे भगवान नंगे नंगो शायद गर्मी के दिन होंगे, भगवान को ऐसी चड्डी ऐसा कुछ पहनाए थे, वस्त्र पूरे वस्त्र नहीं पहनाए थे, कुछ चंदन लेपन था, तो कुछ कम वस्त्र ही पहने हुए थे विग्रह उस दिन। तो सूरदास मेरे भगवान नंगो आज तो कुछ कम वस्त्र पहने हैं। तो सभी समझ गए, सभी ने ताली भेजा, आपने कर तो जिनकी आंखें थी उनको तो दिखाई नहीं दे रहा था वैसे, लेकिन क्या, लेकिन सूरदास देख रहे थे, सूरदास की आत्मा देख रही थी। वैसे जो लोग सुनते हैं सुन सुन के दिखाई देने लगता है, जैसे सुनते जाएंगे हम लोग तो दिखाई देने लगेगा, हमारी आंखें खुलेगी। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक समय अपने शिष्य को कहे, एक शिष्य बीच में से कहीं गया और फिर लौट आया, तो कहां गए थे? तो उसने कहा दर्शन के लिए गया था। तो भक्ति सिद्धांत कहे कि तुम गए मंदिर में, विग्रह के सामने तुम खड़े थे, हाँ हाँ, आंखें तुमने खोली, हाँ खोली, बंद की, हाँ बंद की, खोली बंद की, तो तुम्हारे आंखों की कसरत कैसी रही? How was your eye exercise? Okay. फिर उन्होंने कहा कि मैं यहां तुमको आंखें देने के लिए यहां कुछ प्रवचन, कथा, शास्त्र, तत्व, सिद्धांत सिखा समझा रहा था और तुमने उसको बीच में छोड़ दिया। तुम दर्शन करने के लिए गए या तुम स्वतंत्र दर्शन करने के लिए? तुम अपने अपने स्वयं के शक्ति सामर्थ्य से दर्शन कर सकते हो? तो दर्शन की विधि है श्रवण, और फिर भगवान भी कहे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, फिर गुरुजन कहते हैं श्रवण कीर्तन करो, या हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण कीर्तन करो, और उसको विधि पूर्वक करेंगे तो फिर आंखें, हमको आंखें प्राप्त होगी, दिव्य चक्षु प्राप्त होंगे। प्रेमांजन छोरित भक्ति विलोचन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जय हो राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, गौरनित की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम।